श्रीमद् भागवतम 10:26 डेट 28 फरवरी 2015 स्पीकर परम प्रकाश प्रभु
चंद उग्र श्वसन वायु द्वारा वे पिता हिलाए गए प्रीणनम तृप्ति जीवनम उनका जीवन जल ही निरसंदेह अस्य इस जगत का मुमुचु मुक्त किया करुणा दयालु व्यक्ति इव सदृश अनुवाद एवं तात्पर्य इस दीवान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए तथा दूर ले जाए गए। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह इस संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे थे। तात्पर्य, जिस तरह कभी कभी महान दयालु व्यक्ति समाज के सुख हेतु अपने जीवन या धन का उत्सर्ग कर देते हैं, उसी तरह बादलों ने सुखी पृथ्वी पर जल बरसाया। यद्यपि इस तरह से बादल विनष्ट हो गए किंतु पृथ्वी की खुशी के लिए उन्होंने मुक्त भाव से वर्षा की। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण बुक्स में इस श्लोक की टीका पर इस प्रकार की है। वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झंझोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो ये बादल एक धनी पुरुष की भांति होते हैं। जिस तरह आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना सारा कोष खाली हो जाने पर भी धन लुटा देता है, उसी तरह ये बादल पृथ्वी की सतह पर अपना सारा जल वितरित करके स्वयं रिक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो वे उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ता है, और जब दान देने की आवश्यकता पड़ती है तो वे धन का वितरण इस तरह करते मानो बादल जल विरक्त कर रहा हो। बादल द्वारा जल का वितरण इतना भव्य होता था कि उसकी तुलना महान दानी व्यक्ति द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादल से इतनी प्रचुर वर्षा होती है कि यह जल चट्टानों तथा पर्वतों पर और जहां आवश्यकता नहीं है उन सागरों पर भी बरसता है। बादल उस दानी व्यक्ति की तरह होता है जो वितरण के लिए अपना कोष खोल देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव नहीं करता, वह मुक्त हस्त दान देता है। अलंकारिक भाषा में बादलों में जो बिजली चमकती है वह ऐसा प्रकाश है जिससे वे पृथ्वी की दुखित अवस्था को देखते हैं। तेज बहने वाली हवाएं उनके गहरे सांस है और जैसा कि किसी दुखी व्यक्ति में देखा जाता है, पृथ्वी की दुखित अवस्था देखकर बादल वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए वे जल बरसाते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो अन्त प्रवेश मम वच्मि मां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान्त हस्तचरण श्रवण त्यगादिन प्राणन्न नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणन्न नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो प्राय आप श्रीमद् भागवत की मधुराति मधुर लीला श्रवण करते हैं। लीला के अंतर्गत जिस तरह ग्रीष्मकाल के ऋतु का इसके अगले अध्याय में वर्णन हुआ, इस अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन है। इसके बाद शीत हेमंत ऋतु का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के अलग अलग लीला चरित्र है, अलग अलग अवस्था में किए गए, कोई 5 साल की आयु में, कोई 10 साल की आयु में, कोई बाल पौगंड किशोर इत्यादि में कहे गए किए हुए हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी हमें इस तरह प्रस्तुत करते हैं ऋतु के अनुसार, भगवान की आयु भी बढ़ रही है, वो क्रम भी साथ में ले रहे हैं कि पहले कौन सी लीला हुई, इसके बाद कौन सी हुई, वो सब लीला साथ में ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस ऋतु के अनुसार लीला हुई है उस ऋतु का भी क्रम बनाए रखे हुए है। तो ग्रीष्मकाल की ऋतु में इतना ताप हुआ कि गाय तूर्ण लोभे न तूर्ण चरने के लिए दूर चली गई और दावानल लग गई, तो उसमें कृष्ण कृष्ण महावीर्य भगवान को पुकारा और दावाग्निपान किया भगवान ने। तो इस अध्याय के प्रारंभ में ही तयो अद्भुतम कर्मम, ऐसा अद्भुत कर्म दावाग्नि मोक्षम आत्मनः, दावानल से मोक्ष किए भगवान, दावानल से बचाए, ऐसा अद्भुत कर्म है भगवान का। तो वो कर्म जो है वो सभी कर्म, जिस तरह प्रलंबासुर का वध हुआ और दावानल पान, ये दोनों एक ही दिन में हुआ, वो अद्भुत कर्म है। वो जो गोप बालक है वो घर पर आकर अपनी माताओं से कहने लगे, तो वहां बहुत ही सुंदर महाराज जी बताते हैं कि जिस तरह हम तो 5000 साल पहले की लीला अभी हम थोड़ा वहां जाकर वृंदावन में जाकर थोड़ा स्मरण कर उस लीला को हम कहते हैं, लेकिन महाराज जी वो तो ताजा ताजा भागवत कहते थे। ताजा ताजा भागवत मतलब आज की लीला आज ही कह देना है, डेली की जो भगवान व्रज में जो लीला करते हैं वो डेली, आज का नया जो लीली हुई वो नया पूरा ताजा ताजा भागवत महाराज कहते हैं, फ्रेश एकदम, आज की जो लीला हुई है आज ही कह देना है, कल जो होने वाली वो कल शाम को बताना है। तो इसी क्रम से कह रहे और कहते कहते ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का वर्णन करने जा रहे हैं। ऐसे ग्रीष्म लीला का वर्णन हुआ और सुखदेव गोस्वामी को भी वर्षाकालीन लीला का ही वर्णन करना है। तो लीला वर्णन करने से पहले इस वर्षा काल में जो जो वातावरण होता है, जो दृश्य होते हैं, उसमें बहुत बहुत सुंदर उपदेश होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी की इच्छा है उस उपदेश को भी मैं पहले कह दूं। तो 21 श्लोक चौथे श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक 21 श्लोकों में यहां वर्षा ऋतु से सुखदेव गोस्वामी कुछ उपदेश दे रहे हैं। कुछ है ये और उपाध्य ये, कुछ छोड़ना होता है और कुछ उस उपदेश से ग्रहण करना होता है। तो 21 श्लोकों में उपदेश है, उसमें से तीसरा श्लोक है, ये बहुत ही अच्छा, महाराज जी भी बताते हैं बहुत ही अच्छा उपदेश देने वाला अध्याय है वर्षा ऋतु का वर्णन 21 श्लोकों में। और कहते हैं और इसके बाद 7 श्लोकों में जो लीला कहना है वो खाली 7 श्लोकों में ही कहते हैं। वर्षाकालीन जो भगवान की लीला है वो 21 श्लोकों के बाद 25वें से 32 श्लोक तक 7 श्लोकों में वर्षाकालीन लीला का वर्णन करते हैं। लेकिन इस श्लोक में जो उपदेश दे रहे हैं हम उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, क्या उपदेश दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वर्षा काल में सर्व समुद्र उद्भवा, आगे के श्लोक में शब्द आया है तीसरे श्लोक में, सर्व सत्वम से उद्भवा, सभी जीव जो है वर्षा कालीन में प्रकट हो जाते हैं। सभी जीव, जिस तरह अभी इतने जीव नहीं है लेकिन जैसे वर्षा काल आ जाएगा कोई छोटे छोटे जीव है और कई जो भूमि में रहते वो भी प्रकट हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, तो कहते हैं सबको भगवान के साथ रमण करना है। ऐसे वर्षा ऋतु ही सब जीवों की माँ कही गई है, क्योंकि सभी जीव इसमें ही प्रकट होते हैं। अभी इतना मच्छर मच्छर नहीं रहेंगे लेकिन जब वर्षा काल आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे। जब मेंढक होते हैं वो भी अभी दिखते ही नहीं है, जैसे ही वर्षा काल आ गया तो मेंढक भी बाहर आ जाएंगे। और भगवान जिस तरह मेंढक बाहर आते हैं और जिस तरह मेंढक कूदते हैं उसी तरह भगवान भी कूदते हैं। तो कहने का तात्पर्य सभी जीवों को इच्छा है कि हम भगवान की लीला देखें और उनके साथ लीला में भाग ले, हम पार्टिसिपेंट बन जाए। खाली गोप गोपी उनको ही नहीं, सभी जीव। तो इसीलिए सर्वसत्व समुद्भवा, सर्व जीव उत्पन्न होते हैं इस वर्षा काल में और भगवान के साथ लीला करते हैं। तो इस श्लोक के अंदर बताते हैं, प्रभुपाद महाराज भी बहुत सुंदर तरीके से कृष्णा बुक्स में से पैराग्राफ लिए और एक अलंकारिक भाषा में इसको कैसे समझना है उस तरह लास्ट पैराग्राफ में बताए। जिस तरह बादलों में बिजली चमकती है, तड़िद्वंतो महामेघा, महामेघ मतलब बादल, बादल में तड़िद्वंतो बिजली चमकती है जोरदार, और बिजली चमकती है चंड स्वसेन वेपिता, और प्रचंड श्वसन वायु के द्वारा बादल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। वर्षा काल के अंतर्गत जो आकाश में बादल होते हैं वो चंड श्वसन वेपिता पुष्कल वायु के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जाते जाते बीच में क्या होता है, तड़िद्वंत बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है तो क्या होता है, वो बिजली को यहाँ आंख बताया गया, बिजली चमकती ऐसा प्रकाश होता है बिजली का, और बादल देखते हैं, क्या देखते हैं, पृथ्वी पर देखते हैं, बिजली उनकी आंख कही गई बादल की, कि जैसे ही आंख होते हैं वो देखते हैं पृथ्वी पर कि ग्रीष्म ऋतु के कारण पूरी पृथ्वी जो है तप्त है, सभी जीव दुखी है ग्रीष्म के कारण, तो देखती है बादल देखते हैं कि अभी बहुत जरूर है वर्षा की, बहुत जरूर है, तो जरूर होने के कारण प्रीणनम जीवनम यस्य, उनका जीवन है जल, बादलों का जीवन क्या है, जल, यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर, यमुना जीवन केली परायण, यमुना जीवन मतलब यमुना के जल में विहार कर रहे भगवान, तो जल को ही जीवन कहा गया है, तो इसी तरह यहां बादलों का जीवन जल है, अगर बादलों में से जल निकाल दिया जाए तो बादल है ही नहीं, तो उसी प्रकार कहते कि प्रीणनम जीवनम यस्य, अपना जीवन जो धन बादल के पास जल है वो बरसा देते हैं, कैसे, मुमुचु करुणाइव, बरसा देते हैं कैसे, करुणाइव, करुणा के कारण, नीचे देखते हैं कि इतने जीव दुखी है और मेरे पास कितना जल है, सब जल मेरे पास है, एकत्रित मैं कर लिया हूं, लेकिन मेरे पास सभी आ जाने के कारण ये सभी जीव दुखी है, तो दुखी होने के कारण बादल जो है करुणा इव, जिस तरह करुणा जिसके हृदय में भरी होती है वो जिस तरह धन का दान कर देते उसी तरह बादल ने अपना जो धन रूपी जल है वो बरसा दिया। तो यहां तो बहुत ही सुंदर करुणा इव, आचार्य भी बहुत बहुत बताते हैं, ऐसे विजय ध्वज तीर्थकृता पद्य रत्नावली में एक माधुर्य वरा आस्वादन है उनका कि कृष्णस्य करुणाइव अनेन भक्ति सामग्री मताम ज्ञानांबु वर्षयन्ति, कृष्ण कटाक्ष इति सूचितम भवति, कृष्ण के लिए कटाक्ष कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि करुणा एव कृष्णस्य ज्ञानाम्बुम वर्षयन्ति, क्योंकि भगवान को आगे जाके ज्ञानाम्बु का वर्षण करना है, सभी जीव दुखी है और आगे जाके ज्ञानाम्बु का वितरण करना है, कितना करना है, जितना अपने पास है, जिस तरह बादल के पास जितना जल है वो सब बरसा देते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने पास जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान आगे बरसाएंगे, जिस तरह आगे जाके बरसाया भगवत गीता के रूप में, भगवत गीता में कहा है अर्जुन मेरे पास जितना था वो सब मैं तुझको दे दिया, इसके आगे कुछ भी बाकी नहीं है, मेरे पास जितना था वो सब अर्जुन मैं तुझको दे दिया, अभी कुछ भी बाकी नहीं है। तो इस तरह विजयद्वार तीर्थ कहते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण जी अलग अलग आचार्यों का करुणा पर एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह रंतिदेव आदि हो जीवनं समात्र याचकं जलपिता तेम उपमा ततक दृष्टया दयावीर। वो कहते हैं रंतदेव आदि जो राजा हुए उन्होंने करुणा युव करुणा के बारे अपने पास जो जल था वो भी दे दिया। ये दुष्यंत महाराज के पुत्र भरत हुए उस वंश में राजा रंतिदेव हुए उनकी कथा नव स्कंद के 21वें अध्याय में है। वहां बताते हैं उनके शासन के अंतर्गत इतना दुष्काल गिरा कि सभी जीव तड़प रहे थे। तब राजा रंतिदेव ने अपना जितना धन कोष था वो सारा खोल दिया प्रजा के हित के लिए। लेकिन प्रजा के हित के लिए खोल देने के बाद भी प्रजा दुखी रही। धन जो प्रजा का कोष था, जो धन का राज्य का कोष था, वो खत्म हो गया। कुछ आया ही नहीं नया, तो कहां कब तक टिकेगा। तो राजा से और दशा देखी नहीं गई, तो राजा और उसकी पत्नी, राजा रंतिदेव और उसकी पत्नी और उसके पुत्र तीनों उस दिख को देख नहीं पाए, तो राजा चले गए वन में। अपनी प्रजा का दुख देख नहीं पाए, राजा चले गए वन में। वन में जाते जाते 48 दिन बीत गए, कुछ भी भोजन मिला, जल भी नहीं मिला। राजा रानी और पुत्र तीनों भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं। 48वें दिन थोड़ा सा भोजन मिला तो तीन पाठ कर लिए। तीन जन थे, पिता पुत्र और राजा की पत्नी, तीन राजा रंतिदेव उनकी पत्नी और उसका पुत्र, तीन थे। तो तीन पाठ में कर लिया, जैसे तीन पाठ में किया और जैसे ही खाने की महाप्रसाद करने की तैयारी कर रहे तो तब तक एक ब्राह्मण देव आए। राजा के चरण में निवेदन किया, राजा मैं बहुत भूखा हूं, मैं भूखों के मारे मर रहा हूं, मैं तीन दिन से भूखा हूं। राजा सोचने लगे तुम्हारे भाग्य तो अच्छा है, तुम तीन दिन से हो, हम 48 दिन से है। तो राजा ने ऐसा नहीं किया, राजा रंतिदेव ने बोला भाई ब्राह्मण देव ये लीजिए, मेरे भाग का जो भोजन है वो मैं आपको दे देता हूं। तो उनके जो पाठ 48 दिन से भूखे थे और तीन दिन भूखे वाले को दे दिए। तो बच्चा अभी दो पाक का था, तो जैसे वो ब्राह्मण देव गए तो दूसरे तुरंत आए, एक शूद्र आए तुरंत, एक शूद्र आए और शूद्र आकर निवेदन करने लगे कि हे राजा मैं 5 दिनों से भूखा हूं और मैं भूख के मारे मर रहा हूं। तो उन्होंने तो अपना दे दिया था, अभी सामने उनकी पत्नी थी, तो जैसे पति होंगे ऐसे तो पत्नी होगी ही ना, सतयुग की बात है सब, कलयुग की बात नहीं है। पति हो ऐसी पत्नी हो और पत्नी हो ऐसे पति हो, ऐसा तो कलयुग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। सतयुग में तो ऐसा था कि पति की तरह पत्नी होती थी, अभी तो क्या होता है पति के पैसे भी अलग होते हैं, पत्नी के पैसे भी अलग होते हैं, ऐसा भी है अभी कलयुग में तो इतना हो गया है। तो रानी ने भी अपना जो भाग था वो उनको ब्राह्मण को दे दिया, और जैसे ब्राह्मण को दे दिया तो बच्चा अभी एक भाग जो अपने पुत्र के पास था हो, तो वो पुत्र जैसे ही खाने की तैयारी कर रहे थे तो तुरंत एक दूसरा ब्राह्मण आया, एक शूद्र आया और शूद्र आकर बोला महाराज मैं 5 दिनों से भूखा हूं, 5 दिनों से भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख के मारे मर रहा हूं। तो कहते हैं जिस तरह माता पिता के गुण होते हैं तो पुत्र भी ऐसा संस्कारी ही होगा ना। तो पिता के पद पर चलने वाला यह पुत्र था, उस पुत्र ने भी वो दे दिया। अभी बचा खाली जल, जो भोजन था वो तो सब दे दिया, अभी बचा खाली जल। तो राजा ने सोचा चलो ये बर्तन तो सब हो गया खाली, अभी खाली धोकर खाली पानी पी ले, अभी बचा तो कुछ है नहीं। तो तब तक एक दूसरा चांडाल आया, एक चांडाल एक कुत्ते को लेकर आया, और कुत्ते को लेकर आया और बोला, चांडाल बोला महाराज बचाइए बचाइए, मेरा कुत्ता मरने की तैयारी में है, अगर इसको भी जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। तो ऐसा जब निवेदन किया तो सोचिए ये कुत्ते के लिए यहाँ पत्नी पुत्र और स्वयं 48 दिन से भूखे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं, और एक कुत्ता आया और कुत्ते को जिलाने के लिए राजा रंतिदेव जी ने जो जो जल था वो दे दिया। और जैसे वो दे दिया तो और जा रहे कुत्ता पानी पीकर, ऐसे ही जैसे ही पलटे तो तुरंत ही राजा ने तो दान दे दिया, मन में कुछ भी संकोच नहीं रखा। और जैसे ही वो चांडाल और कुत्ता पानी पीकर मुड़ गए तो तुरंत ही जो पूरा दृश्य था वो बदल गया। पूरा दृश्य क्या बदल गया? तो वो चार जन जो शूद्र आए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आए, शूद्र आए, वो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्मराज थे। कहे धन्य धन्य है हे राजा रंतिदेव, तुम्हारी धन्य हो, तुम्हारी कीर्ति देवलोक में भी यहां मुद्रित कीयते, इस लोक में और परलोक में दोनों जगह तुम्हारी कीर्ति का गान होता है। धन्य धन्य है, तुमने अपने प्रजा के हित के लिए अपने पत्नी पुत्र और स्वयं का भी ध्यान न रखकर सब जो है वो प्रजा के लिए दूसरे जीवों के लिए दान दे दिया। मांगो मांगो, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? तो कहते काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। हे प्रभु, इस जो तप्त जीव है यहाँ पर, जो तप्त मेघों ने देखा कि पृथ्वी तप्त है, तो उन्होंने कहा, राजा रंतिदेव ने कहा कि जिनके जो तप्त जीव है उनके आरती नाशनम, उनके दुख का शमन कर दीजिए, उनके दुख का नाश कीजिए। तो भगवान बोले उनका नाश तो मैं अभी कर दूं, लेकिन उसके कर्म भोगेगा कौन? उसके कर्म जो है भोगेगा कौन? वो तो अपने कर्म के हिसाब से उसको फल मिल रहा है, तो उनका जो कर्म है वो कौन भोगेगा? तो राजा रंतिदेव बहुत ही कहते हैं, न कामये हम गतिमीश्वरात परा ओष्टरिद्ध योक्ताम पुनर्भवम वा आरती प्रपद्ये अखिल देह भाजा अंतस्थितोयेन भवन्त्य दुखा। तो राजा रंतिदेव कहते हैं उन सबके दुख जो कर्म है, उन सबके कर्मों का भाग मैं अकेले ले लूंगा, मुझे न काम ही हम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अष्ट सिद्धि से जो गति होती है अष्ट सिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए, और पुनर्भवम वा सभी ये जन्म छोड़कर मोक्ष के लिए कामना करते हैं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो क्या आरती प्रपद्य अखिल देह बाजा, इस जगत में जितने भी जीव है वो जो जीव दुखी भोग रहे हैं उन सबके का दुख का जो कर्म है वो सब मुझे दे दिए, अंतस्थितो मैं उनके साथ रहकर उन सबों का दुख है वो मैं अकेला भोगू और भवंति अदुखा वो सब सुखी हो जाए। तो ऐसे राजा रंतिदेव सभी जीवों के, अपने परिवार के नहीं खाली, कोई पिता होता है तो क्या होता है, ये मेरे पितरे के पुत्र के भाग में जो कर्म लिखा है ना वो भगवान मुझे दे दो, मेरा पुत्र अच्छी तरह से जी जाए। खाली पुत्र पत्नी का नहीं, पूरे संसार का राजा रंतिदेव जी ने दुख मांग लिया, और सभी दूसरे जीव है वो सभी सुखी हो जाए। और प्रभुपाद महाराज जी यहां तात्पर्य में महाराज दशरथ जी का वर्णन करते हैं। दशरथ महाराज भी ऐसे दानी है जो अपने राज्य काल के अंतर्गत प्रजा जो भी आई, जो भी पीड़ित हो, उन सबको दिल खोलकर अपना जो राज्य कोष है वो खोलकर दान कर देते हैं। और कहते हैं जब युद्ध करने जाते हैं तो उसी तरह से युद्ध भी कर लेते हैं। दोनों बात प्रभुपाद महाराज बताए, जो काम करते हैं 100% परफेक्ट। युद्ध करने जा रहे हैं तो वहां कोई हाथ जोड़कर नहीं जा रहे, वहां धनुष लेकर माला रख दिया थोड़ी देर बाजू में, युद्ध करना है तो चलो अच्छे तरीके से युद्ध कर ले। दान देना है तो क्या छोड़ा छोड़ा करना है, जो भी है दर खोल दिया लिया, जो भी काम किए हैं। लेकिन ये जिन जिन का भागवत में नाम है उन सब ने जो कार्य किया वो पूरे दिल से किया है, कुछ लोभ संकोच वश नहीं किया है, इसलिए तो भागवत में नाम है। हम क्या करते हैं सबका रह जाए, उस तरह की बात होती है। हम जब थोड़ा वो कर विचार करते हैं इन बातों पर, थोड़ा उसका भी रह जाए हमारा भी रह जाए, वो पूरे दिल से नहीं कर देते। तो महाराज दशरथ जी का उदाहरण देते प्रभुपाद महाराज, और ये बलदेव विद्याभूषण तो महाराज दधीचि का भी उदाहरण देते हैं। आप सभी तो जानते हैं ये सब उदाहरण कैसे कैसे राजा हुए, लेकिन इसमें दो बात बहुत मुख्यपूर्ण है, उस पर हम चर्चा थोड़ी करें। जब मेघदान करते हैं तो अपना सारा जो जल है वो दान कर देते, इसमें तो उसकी हानि ही है, कुछ फायदा तो है नहीं। फायदा क्या है उनको, अपना जो है सभी पूरा दान देते हैं। क्यों? तो क्या करुणा इव, करुणा के कारण। करुणा, करुणा बहुत बड़ी बहुत सुंदर एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है। प्रभुपाद महाराज में भी बहुत बड़ा गुण करुणा। बादल जब बरसते हैं तो कोई सोचते नहीं, हम जहां पर जरूरत है वहां पर ही बरसे, सब जगह, पहाड़ियों में, चट्टानों पर, शहरों में, गांव में, सब जगह बरसते हैं। यहां तक जहां जरूरत नहीं है समुद्र में, समुद्र में भी बरसते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं करते बादल, जब देना है तो कुपात्र को देना चाहिए ना, और सुपात्र को देना, कुपात्र को देने से क्या मतलब है, और समुद्र में जाकर बरसेगा तो कुछ मतलब है, कुछ मतलब नहीं है उस बादल बरसने से। लेकिन यहां कहते हैं पात्र कुपात्राभ्य, पात्र और कुपात्र का भी ध्यान नहीं रखते। जब करुणा इतनी प्रकट हो जाती है ना तो पात्र कुपात्र का भाव नहीं ध्यान में रखते, स्वतः हो जाती है, स्वतः हो जाती है। जिस तरह प्रभुपाद महाराज ने फुटफोर लाइक खोला तो उसमें कुछ कंडीशन रखा है, कुछ भी, कुछ कंडीशन नहीं है। कोई भी आए, कोई ब्राह्मण आए, वैश्य आए, शूद्र आए, खाली प्रसाद खाने आए, फिर भी आए, उसमें पात्र की प्रभुपाद महाराज ने नहीं देखा। भिक्षा के लिए पात्र है, उसमें पात्र कुपात्र का है, लेकिन जब देने की बात आई, जब अपने पास जो है कुछ देना है तो उसमें उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, दिल से। फूड फॉर लाइफ पूरे जगत में दिल से बांट रहे हैं। बाकी कुछ भी करो तो भाई, कितने समय से 16 माला कर रहे हो, दीक्षा का फॉर्म जाते हो तो यही पूछते हैं ना, बाकी सब में रखा। लेकिन जब करुणा दिखानी है पूरे जगत के जीवों पर तो वहां कुछ भी कंडीशन नहीं, जितना है उतना बनाकर जीवों को खिला दो। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रण के कारण में भी यही कारण है, करुणा इव अनर्पित चरिताम करुणा यो तिलक कलो समर्पयन्तु उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरुष धरि संदय पत सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। आदि लीला का प्रथम प्रकरण का चौथा श्लोक, अनर्पित चिराम करुणा यो तिलक कलो, करुणा के कारण, करुणा के कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य करुणा एक बहुत बड़ा गुण है जिसके कारण भगवान और प्रकट होते हैं और साधुओं में भी ये प्रकट होती है, और इसी के कारण पूरे जगत की जो शांति भरी रहती है। और कहते हैं षड गोस्वामी के अष्टकक के अंदर भी आता है, तक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो। मंडलपति थे लेकिन करुणा के कारण, मंडलपति थे लेकिन उनके हृदय में करुणा प्रकट हो गई, जीवों के प्रति जीवों का हित करने की भावना प्रकट हो गई, तो कोपी न कंथाश्रितो, जो भी था वो सब कृष्ण भावनाथ की सेवा में लगा दिए। और क्या रखा, कोपिन कंथाश्रितो, गोपी भाव रसामृताब्दलहरी कल्लोल मुग्न मुहूर, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ऐसे शर गोस्वामी वृंद भी अनि एक बहुत बड़ा गुण है करुणा, जो इस सुखदेव गोस्वामी तड़ित वंतो महामेगा चंद्रस्वसन वेपिता पीर्णनम जीवनम यस्य मुमुचु करुणाइव। जिस तरह बादल दुखी पृथ्वी को देखकर अपने पास जो धन था वो धन बरसा देते हैं, उसी तरह साधु जो भगवान का भक्त जो वैष्णव होते हैं वो भी दूसरे जीवों का दुख देखकर अपना जो धन है अपने पास जो ज्ञान है वो पूरे करुणा युव बांट देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ऐसे तो कहते हैं कि बादल तो चंद स्वसन वे पिता, उसको कोई हिलाता डुलाता है, बादल को कोई हिलाता डुलाता यहां से वहां ले जाता है फिर बादल बरसते हैं, लेकिन साधु की करुणा ऐसी होती है वो बिना हिलाए ही बरस जाते हैं। कहते हैं ना नवनीत में तो ऐसा होता है, जब ताप होता है तब नवनीत वो होता है, द्रवीभूत होता है, लेकिन साधु तो दूसरे के दुख देखकर करुणा आई, दूसरे के दुख वो अपने पर आता है नवनीत पर तब वो पिघलता है, लेकिन साधु जो होते हैं वो वैष्णव जो होते हैं वो दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। यहाँ चंड श्वसन वे पिता, तो चंड श्वसन से हवा से हवा के फोर्स से हवा के कहने पर बादल बरसते हैं। उसी तरह कई कई धनी होते हैं जो उसके अंदर करुणा नहीं होती है, बरसते नहीं तुरंत, लेकिन कोई सीनियर भक्त जाएंगे थोड़ा हिलाना पड़ता है, क्या इतना इकट्ठा करके बैठे हो थोड़ा भगवान की सेवा में लगाओ, उसको हिलाना पड़ता है, मृत्यु आएगी कुछ नहीं बचेगा, ये आपका पुत्र है वो सब नष्ट कर देगा, रहा नहीं रहा कुछ पता नहीं, अभी जितना है उतनी भगवान की सेवा में लगा दो, हिलाना पड़ता है। जिस तरह यहाँ चंड श्वसन वे पिता यहाँ हवा हिलाती है ना, उस तरह कुछ लोगों को धनी लोगों को हिलाना पड़ता है, तब कितना हिलते हैं, इस तरह की करुणा नहीं हिलती उनकी, थोड़ा थोड़ा ऐसा जिस तरह बाल्टी भरी होती है तो ऐसे ऐसे हिला तो कितना, एक दो टप पानी हिलता है बाकी अंदर ही रहता है। उसी तरह कोई कोई धनी व्यक्ति होता है उसके पास थोड़ा होता है थोड़ा हिलाता है तो हिलने से तो इतना बाहर आएगा नहीं, और जितना आया सो आया, हिलाना पड़ता है। तो चाहे हिलाने से आए या करुणा से आए, धन भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए और अपने पास जो भी है तन मन धन जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे। गंधराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की विदाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।